पृष्ठ संख्या 568। कुछ एक राज्यों में असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याण लाभ वेलफेयर बेनिफिट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन सर्टेन स्टेट्स। कुछ एक राज्य असंगठित श्रमिकों को किसी न किसी प्रकार का लाभ दे रहे हैं। उदाहरणतया हरियाणा सरकार ने कृषि दुग्ध एवं क्रियाओं में रोजगाररत श्रमिकों को दुर्घटना के विरुद्ध बीमा करने का निर्णय लिया है। 10 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के सभी पात्र व्यक्तियों इस परियोजना में सम्मिलित हैं तथा हरियाणा विपणन कानून बीमा बोर्ड कंपनी को 4.8 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम के रूप में भुगतान करेगा। इस स्कीम में किसी कृषक या कृषि मजदूर की कृषि यंत्रों मशीनों एवं उपकरणों पर कार्य करते समय मृत्यु अथवा विकलांगता को कवर किया गया है। जहां मृत्यु अथवा विकलांगता नलकूप खोदने गन्ना पीटने फसल काटने तथा बीनने के दौरान हो जाती है ऐसे मामलों में इस स्कीम में आते हैं। विद्युत प्रघात अग्नि लगने अथवा कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटना भी इस स्कीम में सम्मिलित हैं। मृत्यु की दशा में 15,000 रुपये तथा गंभीर अंग अथवा 2 अंग खोए जाने की दशा में 10,000 रुपये प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। अन्य पूर्ति राशि शारीरिक हानि की गंभीरता पर निर्भर करेगी। उंगली कट जाने पर कम से कम 1,500 रुपये दिए जाएंगे। केरल सरकार ने निर्माण श्रमिकों एवं आबकारी श्रमिकों को 2 कल्याण कोष स्थापित करने का निश्चय किया है। इन 2 सेक्टरों में श्रमिकों के लिए वृद्धायु पेंशन चिकित्सा सुविधा आवास ऋण एवं मृत्यु की दशा में सहायता की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याण कार्यक्रम वेलफेयर प्रोग्राम फॉर रूरल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। सरकार असंगठित श्रमिकों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार हेतु अनेक उपायों द्वारा प्रयास कर रही है। न्यूनतम वेतन मिनिमम वेजेज असंगठित सेक्टर में श्रमिकों के वास्तविक वेतन को संरक्षित करने का उद्देश्य न्यूनतम वेतन निर्धारण एवं समय समय पर इसके संशोधन तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा इसके क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में कृषक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है। न्यूनतम मजदूरी तालिका विभिन्न राज्यों में क्रम संख्या राज्य का नाम प्रभावी तिथि न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 9/2/1987 8.5 रुपये से 11 रुपये तक। अरुणाचल प्रदेश 1/9/1986 15 रुपये से 18 रुपये तक। असम 1/7/1988 19 रुपये। नंबर 4 बिहार 16/10/1986 10 रुपये अथवा 5 किलोग्राम चावल अथवा समकक्ष मूल्य का अन्य खाद्यान्न। नंबर 5 गोवा 1/7/1986 12 रुपये। नंबर 6 गुजरात 5/2/1986 11 रुपये। नंबर 7 हरियाणा 1/4/1987 16 रुपये 25 पैसे भोजन सहित अथवा 20 रुपये 25 पैसे बिना भोजन। नंबर 8 हिमाचल प्रदेश 15/4/1987 15 रुपये। नंबर 9 जम्मू कश्मीर 7/7/1984 10 रुपये 50 पैसे। नंबर 10 कर्नाटक 21/7/1988 12 रुपये से 17 रुपये 56 पैसे। नंबर 11 केरल 1/6/1984 12 रुपये से 15 रुपये तक। नंबर 12 मध्य प्रदेश 26/6/1987 11 रुपये। नंबर 13 महाराष्ट्र 1/5/1988 12 रुपये से 20 रुपये तक। नंबर 14 मणिपुर 1/4/1986 से 12 रुपये से 13 रुपये 40 पैसे तक। नंबर 15 मेघालय 1/3/1987 15 रुपये। मिजोरम 1/1/1987 15 रुपये। नागालैंड 6/5/1987 ₹15, उड़ीसा 15/7/1986 ₹10, पंजाब 1/4/1987 ₹18.48, राजस्थान 1/3/1987 ₹14, सिक्किम 1/10/1987 ₹14, तमिलनाडु 5/4/1983 ₹8 से ₹18 तक, त्रिपुरा 8/8/1986 ₹12, उत्तर प्रदेश 28/5/1987 ₹11.50 से ₹12.50 तक, पश्चिम बंगाल 1/10/1987 ₹18.02। ग्रामीण असंगठित श्रमिक श्रम शक्ति का सबसे बड़ा भाग है, अतएव विकास के लिए सामाजिक आर्थिक लाभों को अनेक उपायों के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, यथा आवास स्थान एवं कृषि भूमि का आवंटन, नियमित आधार पर रोजगार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण ऋण एवं शिक्षा की सुलभता आदि। भारत ने ग्रामीण संगठित से संबंधित 19 अगस्त 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परिसंधि संख्या 141 की पुष्टि कर रखी है, अतः उस समय से ग्रामीण श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों में पहचान करने हेतु प्रयास किए गए हैं, ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की स्कीम का लक्ष्य श्रमिकों को स्वयं को संगठित करने हेतु उत्प्रेरित करना एवं उनके कल्याण हेतु निर्मित कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। यह सर्वप्रथम 8 राज्यों में 415 अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ता 1981-82 के दौरान नियुक्त करने आरंभ की गई थी। 1985-86 के अंत तक यह स्कीम 14 राज्यों एवं पांडिचेरी संघ प्रदेशों में लागू कर दी गई थी एवं 1500 पद अवैतनिक ग्रामीण संगठन कार्यकर्ता के विभिन्न राज्यों को आवंटित किए गए। पृष्ठ संख्या 570। इस स्कीम के अंतर्गत अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ब्लॉक स्तर पर की जाती है एवं प्रत्येक संगठनकर्ता को ₹200 तथा ₹50 मासिक यातायात भत्ता दिया जाता है। यह व्यय राज्यों की सहायता अनुदान के रूप में केंद्र द्वारा पूरित किया जाता है। पृष्ठ संख्या 570। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग, नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना सरकारी प्रस्ताव दिनांक अगस्त 1987 द्वारा ग्रामीण श्रमिक की अखिल भारतीय एवं प्रदेश विशिष्ट समस्याओं को बेहतर प्रकार से समझने हेतु की गई है। आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरमैन, 7 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव है। आयोग की कार्यावधि 3 वर्ष है। आयोग की सुपुर्द कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ग्रामीण श्रमिकों की पहचान, श्रेणीकरण एवं संख्याकरण की समस्याओं का आर्थिक, सामाजिक एवं प्रादेशिक आयामों में गतिशील पर्यावरण में अध्ययन करना। नंबर 2, परिवर्तनशील परंपरीय सामाजिक आर्थिक कार्य परिधि के संदर्भ में ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं कार्यकारी दशाओं तथा उनसे उत्पन्न अयोग्यताओं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव सम्मिलित है, अध्ययन करना। नंबर 3, ग्रामीण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु वर्तमान कानूनों एवं अन्य व्यवस्था का अध्ययन एवं इन उपायों की प्रभाविता तथा तदर्थ प्रशासकीय प्रबंधों एवं रेल प्रणाली की समीक्षा करना। नंबर 4, ग्रामीण श्रमिक विशेषतया भूमि से संबंधित को प्रभावित करने वाले भूमि सुधारों एवं अन्य संस्थागत सुधार उपायों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अध्ययन करना। सामुदायिक संपत्ति संसाधनों, जिनमें भूमि, वन एवं जल संपत्ति है, के प्रबंध एवं नियंत्रण में आए परिवर्तनों के ग्रामीण श्रमिकों पर प्रभावों का अध्ययन करना। नंबर 6 प्रवास संबंधी घटनाओं, वस्तु, विभिन्न कानूनों, प्रशासकीय एवं भर्ती प्रचलनों जो प्रवासी श्रमिक से संबंधित है तथा उनकी विशिष्ट अयोग्यताओं का अध्ययन करना। नंबर 7 ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यकताओं के संदर्भ में नियोजन प्रक्रिया, विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का अध्ययन करना। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, पेयजल, शिक्षा, प्रशिक्षण पर संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक विकास उपायों एवं ग्रामीण श्रमिक के जीवन की गुणवत्ता पर इनके प्रभाव का अध्ययन करना। विशेष तौर पर अध्ययन करना एवं रिपोर्ट देना सम्मिलित है। पृष्ठ संख्या 571 रोमन का नंबर 1 भावी फसलकर्ता एवं अन्य प्रकार के कृषकों के संदर्भ में विभिन्न कानूनों एवं अन्य व्यवस्थाओं की प्रभाविता। रोमन का नंबर 2 बंधुआ मजदूरों की समस्याओं एवं उनके बंधुआपन को दूर करने हेतु कानूनों एवं अन्य प्रभावों को संरक्षित करना। रोमन का नंबर 3 रोजगार उत्पत्ति, आय जनन एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु विशिष्ट लक्ष्य समूहों, क्षेत्रों हेतु पूरक योजना। रोमन का नंबर 4 विभिन्न योजनाओं में निवेश प्रणालियों के चयन एवं श्रम रोजगार पर उनके प्रभाव। रोमन का नंबर 5 ग्रामीण श्रमिकों की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ग्रामीण श्रमिक की सौदेबाजी शक्ति पर उनका प्रभाव एवं ग्रामीण श्रमिकों के संगठन के बारे में व्यवस्थाएं। रोमन का नंबर 6 ग्रामीण श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एवं प्रवर्तन संयंत्र। रोमन का नंबर 7 महिलाओं एवं बच्चों की विशेष समस्याएं। रोमन का नंबर 8 ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था, अनुसंधान वर्धन एवं सूचना प्रसारण। रोमन का नंबर 10 भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं अन्य देशों में अनुभव का तुलनात्मक अध्ययन। आयोग ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करेगा तथा वर्तमान अधिनियमों के अध्ययन एवं वर्तमान कल्याणकारी उपायों के अध्ययन के उपरांत सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री वीपी नरसिंहा राव को अगस्त 1991 में प्रस्तुत कर दी है, जिसकी सरकार उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन कर रही है। राज्य स्तर पर श्रम कल्याण प्रशासन, लेबर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। सभी राज्यों, संघ प्रदेशों में संघ कल्याण के प्रशासन हेतु मंत्री के अधीन जो विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है, श्रम विभागों की स्थापना की गई है। विभाग का अध्यक्ष श्रम आयुक्त IAS अधिकारी होता है। उसकी सहायतार्थ अतिरिक्त संयुक्त उप एवं सहायक श्रम उपायुक्त, उप निरीक्षक फैक्ट्री, फैक्ट्री निरीक्षक, चिकित्सा इंस्पेक्टर फैक्ट्री, श्रम एवं समझौता अधिकारी एवं अन्य समर्थक अधिकारी होते हैं। अनेक राज्यों में श्रमिक प्रतिपूर्ति कानून 1923 एवं मजदूर संघ पंजीकरण कानून 1926 के अंतर्गत श्रमिक प्रतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। विभाग के कार्य, फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट। श्रम विभाग का मुख्य दायित्व औद्योगिक शांति बनाए रखना, श्रम कल्याण को बढ़ावा देना एवं श्रम कानूनों का प्रवर्तन करना है। विभाग श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य सामायिक हस्तक्षेप, शीघ्र समझौतों एवं औद्योगिक विवादों में श्रम मंत्रालयों एवं न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्णयों के क्रियान्वयन पर बल देता है, ताकि श्रमिक आंदोलनात्मक मार्ग न अपनाएं। विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कानूनों यथा श्रमिक प्रतिपूर्ति कानून 1923, फैक्ट्री कानून 1948, भारतीय ताप श्रमिक कानून 1923, भारतीय श्रमिक संघ कानून 1926, वेतन भुगतान कानून 1936, न्यूनतम वेतन कानून 1948, लाभांश भुगतान कानून 1965, अनुग्रह राशि कानून 1972, समान मंजूरी कानून 1976 आदि के प्रशासन के अतिरिक्त श्रम विभाग श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य समझौतों तथा औद्योगिक न्यायिकरण एवं श्रम न्यायालयों द्वारा प्रदत्त अनिर्णयों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। पृष्ठ संख्या 572। कुछ एक राज्यों में श्रम संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए विशेष संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि अन्यों में उपरोक्त अधिकारी ही इस कार्य को करते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अंतर्गत समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पता करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योग्य अधिकारियों को भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया है। कुछ राज्यों के श्रम विभागों ने ग्रामीण श्रम इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है, जो कृषक श्रमिकों को निर्धारित दरों पर मजदूरी दिए जाने को सुनिश्चित करते हैं। कुछ एक राज्यों में स्वैच्छिक आधार पर स्वायत्त निकायों औद्योगिक सुरक्षा परिषदों की स्थापना की गई है, जो औद्योगिक श्रमिकों एवं मालिकों में सुरक्षा चेतना का विकास करते हैं। परिषद ऐसी फैक्ट्रियों को विजयोपहार पुरस्कृत करता है जो सुरक्षा मापदंडों में सुधार एवं दुर्घटनाओं में कमी दिखलाती है। परिषद निकाय देश के विभिन्न भागों में सुरक्षा प्रोग्रामों का आयोजन भी करते हैं। श्रम विभाग श्रम कल्याण केंद्र भी चलाता है, जहां महिला श्रमिकों को एवं पुरुष श्रमिकों को महिला आश्रितों को दैनिक मजदूरी पर सिलाई बुनाई एवं काश्तकारी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग श्रम गजट श्रम समाचार प्रत्येक मास प्रकाशित करता है, जिसमें श्रम संबंधी आंकड़े एवं श्रमिकों की रुचि संबंधी महत्वपूर्ण सूचना दे दी जाती है। विभाग का सबसे प्रमुख कर्मचारी श्रम कल्याण अधिकारी है, जिसके कार्य निम्नलिखित हैं। श्रम कल्याण अधिकारी लेबर वेलफेयर ऑफिसर। भारतीय उद्योग में श्रम अधिकारी को महत्व को 1931 में अनुभव कर लिया गया था, जब शाही श्रम आयोग ने श्रमिकों को ऋणग्रस्तता एवं चाकरी के दोषों से मुक्त करने, श्रमिकों को प्रवक्ता के रूप में कार्य करने एवं श्रमिकों तथा प्रबंधकों के रूप में मध्य शांतिपूर्ण समझौता कराने हेतु श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश दी है। राज्यों ने लोकप्रिय सरकारों ने मालिकों को फैक्ट्रियों में पूर्णकालिक अधिकारी श्रम अधिकारी नियुक्त करने के लिए विवश किया। दूसरे महायुद्ध के दौरान इन अधिकारियों को कल्याण एवं श्रम संबंधी प्रशासन कार्य सुपुर्द किया गया तथा बाद में उनके कार्यों में कल्याण कार्मिक एवं औद्योगिक संबंधों में संबंधित कार्य भी सम्मिलित हो गए तथा उन्हें श्रम कल्याण अधिकारी कहा जाने लगा। कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु कानूनी व्यवस्था फैक्ट्री कानून 1948, खान कानून 1952 के अधीन दी गई, जिसके अंतर्गत 500 अथवा अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में श्रम कल्याण कानून अधिकारी की नियुक्ति विधिक दायित्व है। बागान श्रम कानून 1951 300 अथवा अधिक श्रमिक वाले बागानों में ऐसी व्यवस्था करता है। पृष्ठ संख्या 573। श्रम कल्याण अधिकारी के कार्य फंक्शंस ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। श्रम कल्याण समिति 1966 ने फैक्ट्री कानून 1948 के अधीन निर्मित आदर्श नियमों पर आधारित श्रम कल्याण अधिकारियों को निम्नलिखित दायित्वों का उल्लेख किया है। रोमन का नंबर 1 सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रोग्रामों यथा आवास मनोरंजन स्वच्छता सेवाएं जो कानून के अधीन प्राविधित हैं, संयुक्त समितियों की क्रिया, वेतन सहित अवकाश स्वीकृति, श्रमिकों के प्रतिवादों का परिशोधन का पर्यवेक्षण। रोमन का नंबर 2 श्रमिकों को कार्मिक एवं पारिवारिक समस्याओं के बारे में परामर्श, उन्हें अपने कार्य पर्यावरण के प्रति समंजन करने में सहायता, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का समझना। रोमन का नंबर 3 श्रम एवं कल्याण नीतियों, अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्रोग्रामों, श्रमिकों के विधित दायित्वों को पूरा करने, सीमांत लाभों को विकसित करने, श्रम शिक्षा एवं संचार साधनों के प्रयोग के बारे में प्रबंधकों को परामर्श देना। रोमन का नंबर 4, श्रमिकों के साथ संपर्क स्थापित करना, सुखद औद्योगिक संबंधों के मूल्य को समझना, कंपनी नीतियों, श्रमिकों को समझाना तथा विवाद की स्थिति में श्रमिकों को समझौता करने हेतु तैयार करना। रोमन का नंबर 5, प्रबंधकों के साथ संपर्क स्थापित करना ताकि वे श्रमिकों के दृष्टिकोण को समझ सकें। प्रबंधकों के विचाराधीन मामलों में श्रमिकों की ओर से हस्तक्षेप करना, विभिन्न विभागीय अध्यक्षों को कानून के अधीन उनके दायित्वों को पूरा करने में सहायता देना, प्लांट में सुखद संबंध बनाए रखना तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु सुझाव देना। प्रबंधकों एवं श्रमिकों के साथ मिलकर प्लांट में सुखद औद्योगिक संबंध स्थापित करना, परिवादों के शीघ्र परिशोधन हेतु व्यवस्था करना, विवादों का शीघ्र निपटान करना तथा उद्योग की उत्पादक दक्षता एवं उत्पाद को बढ़ाना। रोमन का नंबर 7, जनता फैक्ट्री निरीक्षकों, मेडिकल अधिकारियों एवं अन्य निरीक्षकों यथा समुदाय के अन्य अभिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करके विभिन्न कानूनों के उचित प्रवर्तन हेतु प्रयास करना एवं श्रमिकों की सामुदायिक सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करना। संक्षेप में, कार्य स्थान एवं बाहर दोनों स्थानों पर श्रमिक के कल्याण संबंधी सभी मामलों की देखभाल श्रम कल्याण अधिकारी का दायित्व तो है। उसने प्रमुख रूप से सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक श्रमिकों हेतु समाज कल्याण सेवाओं को संतोषप्रद ढंग से प्रशासित किया जाए। वह कार्मिक प्रशासन एवं औद्योगिक संबंधों के मामलों में स्टाफ कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार वह सलाहकार, परामर्शदाता, मध्यस्थ एवं संपर्क व्यक्ति के रूप में प्रबंध एवं श्रम दोनों के लिए कार्य करता है। उसे विभाग के अध्यक्ष के समकक्ष स्थिति प्राप्त है। वह तटस्थ व्यक्ति प्रबंध एवं श्रमिकों के मध्य एक प्रकार की प्रतिरोधक रूप में कार्य करता है। इस उद्देश्य हेतु आदर्श नियम उसे प्रबंधकों द्वारा उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। पृष्ठ संख्या 574। परंतु व्यवहार में स्थिति भिन्न है। वास्तविक व्यवहार में श्रम कल्याण अधिकारी को विधियों द्वारा प्रदत्त भूमिका एवं स्थिति प्रदान नहीं किए जाते। अनेक नियोक्ता श्रम कल्याण अधिकारी की विधिक नियुक्ति व्यवस्था के प्रबंधकों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण समझते हैं। यदि व्यवस्था उन्हें किसी को नियुक्त करना भी पड़ जाता है तो वे इसके कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ा कर देते हैं। ऐसा उपागम कुप्रबंधित कंपनियों को अपने दायित्वों पूरा न करने में सहायता देता है, जो गड़बड़ हो जाने पर दायित्व श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में डाल देते हैं। श्रम अधिकारी को प्रदत्त कानूनी संरक्षण के कारण प्रबंधक उसे बाहर का व्यक्ति समझते हैं, जो उसकी पदोन्नति मार्ग में बाधा खड़ी कर देते हैं। यद्यपि औपचारिक रूप में पद को बनाए रखते हैं, परिणाम स्वरूप श्रम अधिकारी अपने उन दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ हो जाता है जो कानून एवं नियमों द्वारा उसे सुपुर्द किए गए हैं। अतएव अपने कार्य में प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि श्रम कल्याण अधिकारी को प्रबंध मंडल का भाग बनाकर प्रबंध के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। कभी कभी सुझाव दिया जाता है कि कल्याण उत्तरदायी हो। कल्याण अधिकारी को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। वह सरकार के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होकर ऐसी व्यवस्था से श्रम कल्याण अधिकारी का प्रबंध मंडल से बिलगाव उत्पन्न ना करे तथा उनमें फैक्ट्री निरीक्षण स्टाफ में कोई मूल अंतर भी ना रहने दिया जाए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्रम कल्याण उपायों एवं उनको क्रियान्वित करने हेतु व्यवस्थित प्रशासकीय तंत्र इस तथ्य को उजागर करता है कि सरकार श्रमिकों, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, की दशा को सुधारने के बारे में चिंतित है, परंतु सरकार के प्रयास अभी अधूरे हैं। सरकार ने निस्संदेह अनेक कानूनों का निर्माण किया है, परंतु इनको क्रियान्वित किए जाने की दिशा में भारी दोष हैं। उदाहरणतया न्यूनतम मंजूरी कानून संस्थागत एवं आर्थिक कारणों से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। केवल राज्यों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में ही नहीं, अपितु उद्योगों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में अलग अलग स्थानों पर घोर असमानताएं पाई जाती हैं। कल्याण व्यवस्थाओं में एक रूपता होना चाहिए एवं कल्याण का एक निश्चित न्यूनतम मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान अस्वस्थकारी एवं अस्वच्छ वातावरण, सुरक्षा प्रणालियों के अभाव, पर्यावरण दूषण से ग्रस्त हैं। महिला श्रमिकों का बर्बर शोषण होता है, यद्यपि उन्हें पुरुषों के समान वेतन दिए जाने की व्यवस्था है। कृषि क्षेत्र तथा अन्य सेक्टरों में बाल रोजगार की दयनीय स्थिति है। असंगठित क्षेत्र को अभी उन सुविधाओं का लाभ दिया जाना शेष है जो संगठित श्रमिकों को उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में बंधुआ मजदूर प्रणाली कानून द्वारा प्रतिबंधित अब भी चल रही है। श्रम कल्याण अधिकारी श्रम कल्याण हेतु अपने दायित्वों को दक्षतापूर्वक एवं निष्ठा से पूरा करने के लिए उचित प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हैं। प्रबंधकों के अवरोध के कारण वे मानवीय अभियंता के रूप में कार्य नहीं कर पाते। कल्याण कोष अधिकतम सेवा उपलब्ध कराने हेतु कल्याण कोष की वृद्धि की जानी आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में कल्याण केंद्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने एवं इन्हें श्रमिकों के समान स्थान अथवा उनके परिवारों के निकट स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि उनका अधिकतम प्रयोग किया जा सके। विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं के प्रशासन में विभिन्न कल्याणकारी समितियों के माध्यम से श्रमिकों की भागीदारी उनमें दायित्व की भावना उत्पन्न करने एवं नियोक्ता के प्रति उनके संशयों को दूर करने के लिए वांछनीय है। पृष्ठ संख्या 575। क्योंकि कल्याण संबंधी उपाय श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी दक्षता में योगदान देता है, अन्य नियोक्ताओं को स्वयं अपने हितों में कर्मचारियों के प्रति उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए, जिससे औद्योगिक शांति सुरक्षा हो, उत्पादन में वृद्धि हो। यद्यपि श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याण सेवा प्रदान करना मुख्यतः राज्य का दायित्व है, तदपि अन्य एजेंसियों यथा नियोक्ताओं एवं श्रमिक संघों का भी इस ओर दायित्व है। श्रमिक संघों के पास निस्संदेह वित्तीय संसाधनों का अभाव है, परंतु वह श्रमिकों में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति चेतना उत्पन्न कर सकते हैं तथा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेतन में वृद्धि एवं कल्याणकारी उपायों के विस्तार के बाद भी उनकी दशा कोई बेहतर नहीं हो पाई है, तथा मद्यपान, अनुपस्थिति, ऋणग्रस्तता एवं परिवार विघटन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतएव समाजसेवियों के लिए आवश्यक है कि वे श्रमिकों एवं उनके परिवारों के साथ अंतर क्रिया द्वारा इन समस्याओं को दूर करने की ओर ध्यान दें। अंततः प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, जिसके प्रति राजनीतिक दल वचनबद्ध हैं कि सभी उद्योगों में क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि श्रमिक प्रबंधकों के साथ बैठकर अपने कल्याण हेतु नीति निर्माण में भाग ले सके एवं इस प्रकार संतोष की भावी से उत्पन्न वृद्धि में योगदान दे सके। संक्षेप में, श्रम कल्याण का अधिक शक्तिशाली ढंग से अनुसरण किया जाना चाहिए, ताकि प्रोफेसर किरकाल्डी के निम्न शब्दों में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कल्याण का संपूर्ण क्षेत्र ऐसा है जिनमें औद्योगिक श्रमिक के मन से निराशा की भावना दूर करने, उसे वैयक्तिक एवं पारिवारिक चिंताओं से मुक्त करने, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, उसे आत्म अभिव्यक्ति का अवसर बनाने, उसे अपना कौशल प्रदर्शित करने तथा जीवन का व्यापक दृष्टिकोण अपनाने हेतु बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि कल्याण के क्षेत्र में विशेषतः खेल कूद में श्रमिकों को स्वशासन की अधिक मात्रा प्रदान की जा सके तो इससे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के प्रबंध में दायित्व, उपक्रम एवं सहयोग की भावना उत्पन्न की जा सकती है। बहुधा ऐसे श्रमिकों में जिनका नित्य कार्य उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं प्रबुद्ध नागरिकता के लिए अति आवश्यक गुणों के विकास का अवसर प्रदान नहीं करता है।